जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 प्यार संख्या 212 पर 8 जुलाई 2016 को पुणे में दिया गया।
गोपी जन बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाइनंदन में क्या करते हैं, महान संतों की लीलाओं का स्मरण करते हैं। जितना ज्यादा लीला का स्मरण करेंगे उतनी में आगे बढ़ोगे। एक श्लोक है चैतन्य चतुर्थ में, श्रद्धा श्री कृष्ण चरणाया सुने जाना, श्री कृष्ण चरण से पाया प्रेम दाना। अनुवाद
सुने सुनता है, यही वह जन व्यक्ति श्री कृष्ण चरणे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है उसे श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम का धन प्राप्त होता
है। वंदेहं श्रीगुरु
साद्वैतं सावधूतं वैतनासहितं कृष्ण
चैतन्यदेवं
कृष्ण
का आशीर्वाद होती है। कृष्णनाथ का विराज जी ने इस श्लोक में हमें यह समझा दी है कि अगर श्रद्धा और ध्यान से महानंदपुरी की कथा पढ़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त कितने भक्तों की इच्छा है प्राप्त है? सरल उपाय महानंदपुरी की कथा सुनो। महानंदपुरी चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण आया है। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के और थोड़े देर में ही अब क्या मनाओगे? चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म। भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी पर उनके सनातन साथी भी साथ में प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले महानंदपुरी प्रकट हो गए, ईश्वरपुरी प्रकट हो गए, हरिदास ठाकुर प्रकट हो गए और अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए। प्रकट होने से पहले महानंदपुरी के विषय में कहा गया है सबसे ऊंचे कोटि के संत थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। महान सचिवपुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी थी, कई कहते हैं नित्यानंद जी को भी दी थी और उनके अनेक शिष्यों में एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। कथा पाठ महानंदपुरी दिन रात उनका एक ही कार्य था भगवान के नामों का। एक दिन महानंदपुरी ने घोड़ा परिक्रम समाप्त की, कई भक्त खास करके उन दिनों में वो भी करते थे घोड़ा परिक्रम गोविंद कुंड में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अगर आप लोगों ने अपने जगह में गोवर्धन परिक्रम किया है आपको याद होगा जब आप परिक्रम करते हो तो एक गोविंद कुंड में डूबते हो, उठते हो आपको क्या ये महानंदपुरी की बैठक है। महानंदपुरी यहाँ बैठे थे, महानंदपुरी वहां थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला मटके में दूध देकर वहां पहुंच के खूबसूरत ग्वाले ने कहा हे संत महात्मा तुम मुझे भूखे ही नजर आते हो, मैं दूध लाया हूं तुम्हारे लिए पी लो और मैं लौटता हूं थोड़ी देर में मटका लेने के लिए, टाइम की देखभाल लेने जा रहा हूं। माता ने पूरी ने पूछा आपको कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूं? मैंने तो किसी से कुछ मांगा नहीं था। वाले ने कहा मेरे गांव में किसी को हक नहीं है भूखा रहने का और मेरे गांव में मैं हर व्यक्ति को भोजन दूध पहुंचा रहे हूं। ये कहकर वाला चल पड़ा महानंदपुरी को, महानंदपुरी ने दूध दिया। इतना खूबसूरत बालक महानंदपुरी ने कभी देखा नहीं था, इतना खूबसूरत, इतनी मधुर कंठ, इतने सुंदर व्यवहार महानंदपुरी देखकर आश्चर्य हो गए थे। महानंदपुरी सोचे थे राधे की मटका लेने आना था पूरी को हल्की सी नींद आ गई। उस हल्की नींद में माधव पूरी ने उसी ग्वाले का दर्शन लिया। मिर्जा को सपना आता है, माधव पूरी को वहां पर सपना है। सपने में उस बालक ने कहा, मेरा एक विग्रह है गोपाल के रूप में, जिसकी स्थापना वज्रा ने की थी लगभग 5,000 साल पूर्व, और मुसलमान के अत्याचार से बचने के लिए उस विग्रह को छुपा दिया है पृथ्वी के नीचे है, के नीचे मुझे वहां गर्मी भी लगती है, ठंडी भी लगती है, आंधी आती है तो महसूस होता है। सुबह लड़के मैंने उठा रहा वहां से निकाल कर साधना कर। इतिहास आप जानते हो गए कि उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य आरंभ हो गया था 500 साल पहले। बहुत बड़ा अत्याचार किया, यहाँ तो एक मस्जिद में एक पत्थर लग गया है, अखबार में हेडलाइन आ जाता है ना। तो नहीं कर रहे, कितने प्रसिद्ध मंदिरों का खंडन कर दिया था मुसलमानों ने। तो मुसलमानों का जब राज्य था, खास करके अरजन का राजा था, राज्य था, वो से हिंदू मंदिर नष्ट हुए, और मुसलमानों के अत्याचार से बचने के लिए कई मूर्तियों को उठाकर ले गए जयपुर। इसलिए जयपुर का एक और नाम है नाम, और हमारे मौसमियों की कई प्रसिद्ध मूर्तियों का दर्शन आप जयपुर में प्राप्त कर सकते हो। वो कई मूर्तियों तो नष्ट हो गई, कई को छुपा दिया खोलकर। तो गोपाल के विग्रह को पुजारी ने क्या किया, उसे देखा मुसलमानों का अत्याचार पड़ते जा रहा है, तो मूर्ति भी सुरक्षित में मूर्ति ने तो वो दबा दिया, छुपा दिया, वो फिर उठा गए। तो जब महाराज ने पूरी को सपने में ये पते सपने में ये सपना देखा, तो सपने में उन्हें पता लगा कि जो ग्वाला है वो स्वयं भगवान था, भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया था। तो आप लोग बड़ा खुश होना चाहिए, तो बहुत दुखी है, क्यों? उन्होंने भगवान से सेवा ले ली। ऐसे तो भगवान कहते हैं चार तो विदा बन जाते मां, चार श्रेणी के व्यक्ति में ईश्वर में आते हैं, एक है जो ज्ञान के आधार पर, दूसरा जो धन चाहता है, तीसरा जो रोगी विवेक है और जिज्ञासा। चार के चार पुण्यात्मा है, कम से कम वो भगवान के वर्तमान है, तो सबसे उत्तम कोटि का भक्त है, तो निष्काम भाव से है भगवान की शरण लेता है। कृष्ण भक्त निष्कामन अतएव शुद्धा भक्ति मुक्ति से निकामी से प्राणी के सुनता है। निष्काम भाव है कि भक्त हैं वो भीतर शांत रहते हैं। तो भगवान पूरी एक तरह से शर्मिंदा हो गए, मैंने भगवान से सेवा ले ली, उनके हाथों से मैंने दूध पी लिया। तुझे भगवान ने सपने में कहा है कि इस स्थान में उनकी मूर्ति लगी हुई है और वहां भगवान को गर्मी लग रही है, उस मूर्ति की स्थापना कर ली है। तब गांव वालों ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा है, देख लो सपने से झूठा भी हो सकता है, खुद के लिए तो उन्होंने झाड़ियों को गले काटा, पेड़ खोदा और खोद खोद कर वही गोपाल का विग्रह था जिसका वर्णन सपने में किया था, वही देखा वो विग्रह इतना भारी था कि कोई उसे उठा नहीं पाया। और भक्त ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला, पहले बाहर निकाला पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ है, तो पानी से निकाल स्नान के बाद फिर सबने निर्णय किया हमें इन नीतियों की क्या करनी चाहिए। तो एक दिन के अंदर महानंद पुरी ने मूर्ति स्थापना की योजना बना ली। दो दिन हम लोग इस पर जब मंदिर पहुंचे हैं मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं, हमें दो साल लग जाता है, दो महीना। महानंद पुरी ने दो दिन में सब कुछ कर दिया, अगले दिन एक बड़ा पत्थर लिया जिसमें मूर्ति को बिठाया, एक बहुत भारी पत्थर लिया जिसको भगवान की पीठ में रखा, पीठ हो गई है। और कई आदमी ने मिलकर उस मूर्ति को स्थापित किया। फिर आनंद पुरी ने भक्त ब्राह्मणों को लेकर आभिषेक किया, आप स्नान करते हो और वहां भी स्नान करते हैं मंदिर में, हम आभिषेक करते हैं लोग उसी आभिषेक जल के को आप पीते हो किस रूप में, तो महानंद पुरी ने अभिषेक की योजना की। 900 मटकों में गोविंद कुंड से जल लेकर आए, तेल से भगवान का बड़ा कफलर मसाज किया, मसाज के भगवान भगवान दादा मसाज प्रेम से भक्त ने जैसे कार्य से बने दिन हमारे स्कूल के सब मूर्तियों का तेल से मसाज घी से मसाज कर दे, तो भगवान के पहले मसाज के 900 जो थे पार्टियां भगवान क्या क्या अभिषेक से स्नान करवाया। भगवान इतनी देर दबे हुए थे तो बहुत गर्मी लग रही थी, शरीर बहुत गर्म था, उसे ठंडा करने के लिए 900 लोटे या बाल्टियों से स्नान करवाया। इसके दौरान पंचगव्य से भगवान के शरीर को मारा और भगवान का अभिषेक करा, साथ ही साथ पूरे शहर में पड़ोस के गांवों में दूर दूर तक सूचना फैल गई कि गोपा की स्थापना हुई है। तो दूर दूर से सब आए, खूब चंदा लेकर गाय खेती लेकर, आजकल तो हम हमारी संपत्ति को मानते हैं देखकर कौन सी मोटर चला रहा है अभी, इसी लोगों के पास पैसा नहीं भी हो तो भी मर्सिडीज गाड़ी खरीदी समाज में स्टेटस बनाने के लिए, उसकी बड़ी महंगी गाड़ी है, तो मैंने कहा इतनी महंगी गाड़ी रखते हो, कैसा रखना पड़ता है, क्लाइंट को दिखाने के लिए क्या हम सब अगर तो सुविधा नहीं भी हो, हम देखते कहाँ से मोटर चला रहा है, कहाँ कोठी है, कहाँ से ब्रांड का कपड़ा पहन रहा है। तो प्राचीन समय में लोगों की संपत्ति मापी जाती थी ये लेकर कितनी जमीन है कितनी गाय है, जैसे नंदनाथ के लाखों गाय। तो हर व्यक्ति के पास गाय भी थी और खेती भी थी। तो सारे ब्रज के लोग आए, लोगों ने कहा लो हमारे तरफ से 10 गाय गोपाल की, लो हमारे तरफ से 10 एकड़ जमीन गोपाल के। और थोड़ी देर में गोपाल जो है बहुत सी खेती गाय और गहनों के मालिक बन गए। गयों ने भेज दी, ने जब लंदन में राधा कृष्ण की स्थापना की तो प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया था, नंदन ईश्वर, नंदन के अस्थि ईश्वर। सामने कुंज बिहार का एक और नाम है श्री श्री पूना ईश्वर। संपत्ति के स्वामी यहाँ दो स्वामी है, कुंज बिहारी और वृंदावन चंद्र। इस बॉर्डर पारना पड़ेगा था। तो कईयों ने सब भेज दी, साथ ही साथ मादन पूरी ने अनाकूट की योजना बनाई। जब 10 कंध में आप भगवान की गोवर्धन लीला पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि नंदनाथ इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, जो देवता है भगवान के अधीन है, तो कई बार बड़े घमंडी भी बन जाते। तो भगवान आए पिता के पास, क्या तैयारी कर रहे हो, हमें भी तो कुछ बताओ। पिता ने जवाब नहीं दिया। फिर बेटे ने फिर से कहा, फिर बेटे ने कहा मित्रों से बच्चों से कुछ छुपाते हुए, पिता ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हो। पिता ने कहा हम किसान हैं, हमारी सफलता निर्भर है किसके ऊपर। सुना कि आपके पूना में महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश नहीं आई, एक दो सच बात है, तो ये बात सच है। बारिश प्राप्त करना है तो तीसरे ध्यान भगवान उपदेश देते, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा के अर्थ है वर्षा की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ करोगे, यज्ञ का अर्थ है धर्म की होगा पालन। यज्ञ नहीं करोगे सब इंद्र तृप्ति करोगे, ये परिणाम अमेरिका में भी कैलिफोर्निया में 3 बारिश नहीं आई थी, अब आई थी। तो नंद बनाने का हम तो किसान है, ये यज्ञ कर रहा हूं मैं जल की प्राप्ति वर्षा के लिए। भगवान ने कहा जो आप किसान है वो तो प्राप्त हो गया कर्मों में, उनसे यज्ञ क्या जो खैर मेरे कहने पर पिता ने वही इंद्र यज्ञ जो तैयार किया था सब यज्ञ की किसको अर्पण कर दिया, गोवर्धन को कितना यज्ञ अर्पण किया, गोवर्धन ने खा लिया सब खा लिया, थाली वैसे की वैसे बनी हुई। ये है अध्यात्मिक टेक्नोलॉजी, आप लोग भौतिक टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हो, आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी आप जानते थे। भगवान आंखों से खा लेते हैं, आप हमें खा सकते हो, आंखों में ड्रॉपर लेकर डाल करो पहुंचेगी, सूप बना लो पेट में पहुंचेगा। भगवान खा भी लेते हैं सब कुछ, खाली रहती है, भरी भी रहती है। अब मैंने यह सबसे प्रधानमंत्री मान दिया, और ये किसी एक अंग से किसी और अंग का ही कार्य कर सकते हैं, जैसे जेतों से खाना, कानों से भगवान का उच्चारण सुनना, भगवान के लिए कोई कार्य ऐसे तो बेटे के कहने पर यही इंद्रिय यज्ञ अर्पण हो गया, कैसे सब तो जिस प्रकार अन्नकूट हुआ था, जाके भगवान श्री कृष्ण कृषि पर थे, उसी प्रकार का अन्नकूट प्रकट हुआ था कब, मानवपुरी के माध्यम से जब गोपाल की स्थापना, फिर अलग अलग खाना आते थे, कहते हैं हमारे तरफ से कब भोग लगेगा इत्यादि। मानवपुरी ने गोपाल की स्थापना की, जिन्हें छह हाथियों की योजना की, जैसे छह आरती करते हैं, तो रोज भगवान को बहुत ही सुंदर भंडारा लगता था। ये नहीं सुखी चपाती और निर्मा, सारे ब्रज के भक्त समर्पण हो गए थे। मानवपुरी खुद गोपाल की पूजा करते थे, और गोपाल को रात को सुनाने के बाद आपको के भगवान भी सोते थे। सोते हाँ, आप देखते हो एक बजे पर्दा बंद कर देते हैं, भगवान थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर भगवान सोते भी हैं, फिर सुबह मंत्रों के उच्चारण से उन्हें जगाया जाता है, भगवान खाते भी हैं, यहाँ तक से छह दफा खाते हैं। तो जगन्नाथ पुरी में कितनी दफा, भगवान को भूख लगती थी, खाते जाते आज जब ज्यादा खाओ तो आपको इंडाइजेशन का डर रहता है, तो भगवान को किसी प्रकार का डर नहीं, जितना खाओगे खा सकते। तो इस प्रकार सालों के लिए महानंदपुरी ने गोपाल बिल्ला की देखभाल खुद की, और सारा दिन पुजारी का काम खुद करते थे, और रात को गोपाल बिल्ला को सुलाने के बाद थोड़ा सा दूध पी लेते थे, बस ये थी उनकी खुराक, केवल थोड़ा सा दूध जो वो पीते थे कब, अपने गोपाल बिल्ला को सुनाने के बाद। देखो उनकी तपस्या, सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, आप पुजारी का काम करोगे तो भी आपको खाना चाहिए, खाना देने में पैसा नहीं मिले तो आप चिल्ला कर जाओगे, फिर आप सेवा नहीं करते। पूरी का भाव देखो, छह आरती दिन में करते थे खुद, भगवान का भोजन खुद बनाते थे, रोज भगवान का अभिषेक खुद कर देते, और रात में जब भगवान सो जाते थे उसके पश्चात क्या थोड़ा सा आनंदपुरी ने गोपाल बिल्ला की देखभाल की। दो साल के पश्चात आनंदपुरी को फिर से एक सपना आया, उस सपने में भगवान ने कहा मैं आभारी हूं तुमने मेरी स्थापना कर दी, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आओ। बंगाल से कई ब्राह्मण आए थे, आनंदपुरी ने उन्हें दीक्षा दी, नाम की खानदानी ब्राह्मण थे, उन्हें दीक्षा भी दी विद्युत के अनुसार। उनको शिक्षा की कैसे विग्रह की सेवा होनी चाहिए, जैसे इस्कॉन द्वारा मायापुर में एक डीडी वर्शिप का कोर्स है, एक डीडी वर्शिप का इंस्टीट्यूट है, जिसमें 4 महीने की ट्रेनिंग है भगवान का शिकार कैसे किया जाए, भगवान की आरती कैसे की जाए, वो कैसे लगाया जाए, ये भी कला है। और सनातन गोस्वामी ने हमें हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ दिया, जिसमें भगवान के 8 विग्रह की किस भाव किन विधियों के अनुसार सेवा होनी चाहिए उसका वर्णन है। ये नहीं हारमोनी की साधा की घंटी बजा ली और विधियों के अनुसार इस मन के मंत्र में विधियों के अनुसार उपासना की जाती है। तो ब्राह्मण को शिक्षा दी कैसे गोपाल की देखभाल करनी है। मानंदपुरी कहाँ चले, नेमुना की हो, नेमुना में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते नेमुना में पहुंचे, वृणादा गोपीनाथ के सामने गए, बड़े उत्साह से नाचने लगे। जब नाच रहे थे तो गोपीनाथ जी के हाथ से जो हार थी उनके हाथ में, तो महाप्रभु के गले में गिर गए। महाप्रभु ने इसे बड़ा अच्छा लक्षण माना और महाप्रभु ने उस लीला का वर्णन किया, कौन सी मानंदपुरी की लीला का वर्णन, जो कि उन्होंने सुना था उन्हें गुरु ईश्वरपुरी के माध्यम से। फिर मानंदपुरी की कथा महाप्रभु ने भी सुनी थी, जैसे आज आप सुन रहे हो, तो उन्होंने सुना था किनके माध्यम से, महाप्रभु एकदम याद आ गया, हाँ ये वही विग्रह है मानंदपुरी आए। तो मानंदपुरी भगवान के आदेश के अनुसार आए जगन्नाथपुरी जाने से यमुना रास्ते में आया, यमुना में मानंदपुरी की समाधि भी है, यमुना में आए, वहां एक बड़ा प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ। कहा जाता है जब भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, उन्होंने सीता को कहा था कि द्वापर युग में इस रूप में प्रकट होगा, उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाई। तो कहा जाता है या माना जाता है वही है राधा गोपीनाथ की मूर्ति, प्राचीन मूर्ति। तो मानंदपुरी जा रहे थे कहा जगतपुरी, किस लिए, चंदन लाने के लिए। रास्ते में रुक गए यमुना का जो मंदिर है, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर था, वहां भगवान को बहुत सुंदर भोग खिलाया जाता था और जो खीर खाई जाती थी रोज शाम को 12 प्यालों में, उसका नाम था अमृत खीर। अमृत खीर कहते हैं जो अमृत स्वर्ग से बनकर आती है, दूसरे शब्दों में खीर का इतना अच्छा टेस्ट था कि ऐसे करता था खीर स्वर्ग से बन गया है। महानंदपुरी को पता था इस मंदिर की भोग भगवान का पुजारी जी जा रहे थे भोग लगाने के लिए, ठीक है क्या लगेगा, ठीक रसोई में भगवान का बहुत ध्यान करते हो तो हम थक कर जाते हैं और अंदर किसी को देखने नहीं चाहिए, भगवान को देखने से पहले मानन पूरे पूछ रहे थे पुजारी जी से आप कैसे कैसे हम भोग लगाते हैं, और उनकी इच्छा थी कि अगर किसी प्रकार उन्हें खीर हमें तकली चटने को मिल जाए तो उनको अंदाजा हो जाए कितना अच्छा खीर है, और लौट के वो अपने भगवान के लिए ऐसी खीर बनाए। तो माधव पूरी जो भगवान को भोग कर रहा था ये भाव प्रकट हुआ समझे तो शर्मिंदा हो गए, भगवान का भोग लग रहा है, भगवान ने खाया नहीं, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं इस खीर को चखूं। मानन पूरी से अपराध जब भगवान को भोग लग रहा है तो भगवान को खाना चाहिए पहले, तो भोग लग जाए उसके बाद खा सकते हो। जब भगवान का भोग त्याग कर रहे हैं हमें ये सोचना चाहिए कि वो ख्याल हो रहा है भगवान के लिए, हमारे चस्के के लिए नहीं। तो मानन पूरी शर्मिंदा हो गए कि मैं ये खीर चखना चाहता था, जब भगवान को भोग लगा था वो भगवान को भोग लगा था उसे मिला हुआ और कुछ चखे बिना बजार में चले गए भजन करेंगे। भगवान को पता था कि मानन पूरी की क्या इच्छा थी, ईश्वर सर्वभूता राम है वो ये देश रचना देश थे विराजमान है किशोर ने तो मानन पूरी भगवान को पता था क्या था क्या था हमारे क्या क्या था, खीर के प्याले को छुड़ा लिया, फिर शाम को खीर रखती थी और पर्दे के पीछे छुपा दिया। जैसे मैंने कहा कुछ समय पहले वहां पर लोग बारह प्याले खीर के भोग के रूप में अर्पण किए जाते थे, तो भगवान ने एक प्याला छुपा कर पूजा पर्दे के पीछे छुपा दिया। जैसे अभी हमारे घर में लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी के दरवाजे के पीछे पर्दे हैं, पर्दे के पीछे मूर्तियां हैं, तो पर्दे के पीछे छुपा दिया। पुजारी को भगवान ने शब्द में कहा मैंने मेरे प्रसिद्ध भक्त मानन पूरी की खुशी के लिए खीर का प्याला छुपा कर पर्दे के पीछे रखा है, तू जाकर इसे लेकर बाजार में जाकर मानन पूरी को पहुंचा दो। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ, भगवान ने खीर का प्याला छुड़ा कर पर्दे के पीछे रख दिया है, असंभव, ये कैसे संभव हो सकता है। मैंने चलो देख आप साढ़े चार बजे मंगल आरती में आते हो, भगवान पड़े साढ़े तीन बजे पौने चार बजे चार बजे जगा देते हैं भगवान को। भगवान को जगाने गया उसने देखा ये सपना सच था, एक खीर का प्याला छुपा हुआ था पर्दे के पीछे एक कोने में, कोई देख नहीं पाए। तो पुजारी जी कहने लगे कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति, उनका कोई परिचय नहीं था आनंदपुरी में, कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो पुजारी बाजार में गए, चिढ़ाने लगे। कोई मानदपुरी नाम का व्यक्ति है यहाँ तुम्हारे लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया है, कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति? मानदपुरी ने जब सुना उनके नाम को पुकारा जा रहा है जोर जोर से, उन्होंने कहा मैं हूं मानदपुरी। पुजारी ने कहा अब ध्यान दो आप कितने भाग्यशाली हो, आपकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। मानंदपुरी को पता लगा भगवान ने उनकी खुशी के लिए खीर के प्याले को चुराया है, वो तो खुशी में नाचने लगे और खीर चक्कर चारे को अलग अलग रूपों में तोड़ दिया, रोज अलग अलग चक्कर थे और कप धोती में बांध दिया। पूरे शहर में सूचना फैल गई कि यहाँ एक ऐसे भक्त हैं जिनकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो सबकी लोगों की इच्छा क्या थी, मानंदपुरी का दर्शन मिले। मानंदपुरी की क्या इच्छा थी, अपनी प्रशंसा से बचे, जो भक्त हैं प्रशंसा नहीं चाहता। कृष्णनाथ कविराज कहते हैं मेरे में इतने अवगुण हैं मेरा नाम भी लोगे सारे गुण मिट जाएंगे, मेरा नाम भी मत लो। और हम पर जीवों की क्या इच्छा है, सदा हमारा नाम लो। नाम नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा शायद द्वेष का भाव है। तुम्हारे तो पूरी सोचने लगे हैं आप सब जगह मेरी प्रशंसा होगी, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। उनकी चिंता ये थी हर जगह लोग जानेंगे मेरे लिए भगवान ने की बताया छुरा है। मानपुरी रेमणा से भागकर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंचे वहां भी लोगों को सूचना पहुंच गई थी मानंदपुरी बड़ा प्रसिद्ध भक्त है जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। अच्छा टेलीफोन के बिना रहना बहुत मुश्किल है, अगर तीन चार घंटे कभी फोन दिया है तो लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा। लोग सब अभी भूल गए, सुबह जब लोग जाते हैं जागते हैं पहली चीज देखते हैं कितने लोगों ने मुझे याद किया करना। तो मानंदपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां की महिमा पहुंच गई थी। जब उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर के अधिकारियों को कहा कि जगन्नाथ जी राम गोपाल विग्रह के लिए उन्होंने चंदन चाहिए, तो उन्होंने 80 पाउंड वजन का चंदन का प्रबंध कर लिया कैंपो के साथ, एक सेवक भी दिया, साथ में एक पत्र दिया कि ये चंदन हम दान दे रहे हैं गोपाल के लिए, क्योंकि उन दिनों में मुसलमान का राज्य था और हम चुंगी में मुसलमान अधिकारी थे, ये मुसलमान अधिकारी हिंदू मंदिर की सेवा के लिए बहुत गौरव करते थे। तो वापस लौटते समय मानंदपुरी चले जगन्नाथपुरी से 80 पाउंड वजन उठाकर खुद एक सेवक के साथ चले कहां पहुंचने के लिए, गोवर्धन, यहां की गोपाल की स्थापना उन्होंने की थी गोवर्धन पर्वत के उच्च चोटी पर। तो रास्ते में लौटते समय फिर वो रुके कहां रेमणा में एक रात के लिए। तो रेमणा में रुके तो भगवान ने फिर सपने में उन्हें एक आदेश दिया, अभी आदेश दिया गोपाल विग्रह में गोपाल विग्रह की स्थापना कहाँ हुई थी? उनकी खुशी के लिए वो चरण नहाने गए थे, वहां रुक गए। गोपाल विग्रह ने कहा, महानंदपुरी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हें मैंने बड़ा कठिन कार्य दिया प्राप्त करने के लिए, तुमने हजारों मीलों मायों की यात्रा की मेरे लिए, अगर आपको गोवर्धन से जगन्नाथपुरी आना होता है तो दिल्ली से बैठा में हो गए भुवनेश्वर या गाड़ी में हो गए तो पैदल तो नहीं जाओगे, अब कहा जाए पैदल जाओ पूरा से पूरी जाओगे, पदयात्रा करते करते से चले जाओ, पर एक साल अकेले तो नहीं जाएगा। तो महानंदपुर की मामा ने परीक्षा ली और कहा तो नौ महीने चलना मुझे गर्मी लगती है, हम जब भक्ति में जुड़ते हैं भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, कई बार हमें कठिन कार्यों का सामना करना पड़ता है। प्रभुपाद जी की परीक्षा दे दो, प्रभुपाद जी को इतने सालों के लिए संघर्ष करना पड़ा, एक समय प्रभुपाद जी ने गीता क्या अनुवाद किया था उतनी कॉपी मैंने शिव को मांगी थी, प्रभुपाद जी ने फिर से किया। कहने का तात्पर्य यह है भक्ति के मार्ग में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें परीक्षा नहीं दी जाएगी, आनंदपुरी की भी परीक्षा ली। तो गोपाल ने कहा तुम परीक्षा में बड़े सफलता के साथ निकले हो, मुझे चंदन अपना प्राप्त हो गया है, मेरा शरीर भी ठंडा हो गया है, तुम इतनी दूर कठिनाई से चंदन मान लाओ मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, भगवान अपने आप को आचार्य विद्या के रूप में प्रकट करते हैं, इस आचार्य विद्या भगवान में कोई अंतर नहीं, तुमने चंदन को यहां ही लगा दो, कहा गोपीनाथ तुम्हारे दुखी ने पुजारियों को बुलाया सुबह और सपना सुनाया, पुजारी खुश हो गई, उन्हें 80 पाउंड चंदन मिल गया। माने दूरी ने पुजारियों को फिर कहा कैसे भगवान को सजाया जाए चंदन के साथ, और इसके बाद चंदन यात्रा का अवसर शुरू हुआ। अभी आप इसको मैं चंदन यात्रा मनाते हो, साहब वृंदावन में मंदिर में मनाते हैं, एक दिन हमारे मंदिर में भी पूरे कृष्ण बाला को ढकते हैं केवल चंदन के साथ, ये चंदन यात्रा शुरू हुई थी। तो महानंदपुरी से वहां से गए जगन्नाथपुरी में गए चतुर्मचार। जब महानंदपुरी गोवर्धन से रघुनाथ जा रहे थे तो रास्ते में वो शांतिपुर में रुके, आज के दिन शांतिपुर में इस्कॉन के भक्तों के द्वारा बहुत बड़ा उत्सव होता है, और लगभग हर साल होते हैं उस समय, यहाँ के हजारों लोगों को भंडारा खिलाया जाता है, हजारों लोगों में। और शांतिपुर में उस समय अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे, वो वहां भजन कर रहे थे हरिनाथ ठाकुर के साथ। हरिनाथ ठाकुर और अद्वैताचार्य सारा दिन भागवत की चर्चा करते थे, भागवत का दिन खास, और जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी उन्हें पता लगा, उन्होंने कहा भगवान हालांकि अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, अद्वैताचार्य ने कहा मेरे लिए संभव नहीं है पतितों को उद्धार करने में, आपको खुद प्रकट होना पड़ेगा। अद्वैताचार्य के पास एक शारदाम शिला थी, उस शारदाम की शिला को आज भी आप दर्शन ले सकते हो, के बोलन है वेदाचार्य रोज शीला की पूजा करते थे तुलसी और चंदन के साथ और उनकी प्रार्थना क्या थी भगवान प्रकट हो जो प्रकट हुए तो माधनपुरी का परिचय हुआ अग्निचार्य के साथ जब वो शांतिपुर से निकल रहे थे अग्निचार्य ने उनसे निवेदन किया कि मुझे अपना शिष्य बना लो माधनपुरी के अनेक शिष्य में एक शिष्य है माधनपुरी कोई बड़ा विनम्रता का भाव था चेतन चंद्रीता में कहा गया है भगवान के जो भक्त है विनम्र हो भी वो सोते में कोई गुण नहीं और जिनमें गुण नहीं है वो कैसे होते हैं हमारे पास तो गुण ही गुण है कोई अवगुण है ही नहीं हमारे में सारे गुण है हमारे पड़ोस में सारे अवगुण है आपको ऐसे विचार है तो माधनपुरी का हमेशा विनम्रता का भाव था तो उनके कई शिष्य थे जिनमें एक थे ईश्वरपुरी और एक थे रामचंद्रपुरी रामचंद्रपुरी उनकी आदत ये थी भक्तों की कमियों को ढूंढना सन्यासी जगदलपुरी आते थे तो रामचंद्रपुरी जबरदस्ती उन्हें बहुत प्रसाद खिलाते थे सन्यासी कहते थे हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए अरे जगन्नाथ जी के प्रसाद को नहीं खाओगे ये तो महान अपराध हो जाएगा जो खाते खिला देते थे फिर कहते थे देखो संन्यास लिया है दुनिया को दिखाने के लिए खाते से एक दिन रामचंद्रपुरी महाप्रभु के कमरे में आए वहां चीटियां चल रही थी सड़क में चीटियां चल रही थी बाद में बात नहीं करते वहां चीटियां चल रही थी फ्रेश में और बहुत गर्मी का मौसम था तो रामचंद्रपुरी कह रहा था लगता है हमारे सन्यासी ने कल मीठा खाया है चीटियां चल रही थी क्योंकि गर्मी का मौसम था चीटियां गर्मी लगी थी तो लगता है हमारे सन्यासी को बहुत चीजें मीठी चीजों का शौक है चेतन महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी के चरित्र में थोड़ा भी कमी होगी तो सब देख लेंगे जैसे सफेद चादर में काला दाग हो दूर तक देखा हो तो महाप्रभु ये कह रहा था सन्यासी का आचरण 100% शुद्ध होना चाहिए महाप्रभु ने क्या किया जब रामचंद्रपुरी ने उनकी निंदा की कि ये सन्यासी ने मीठा खाया ना उन्होंने खाना लगभग बंद कर दिया गोविंद उनके दूसरे से उनको बड़ा क्रोध आया कि रामचंद्रपुरी के कहने पर उन्होंने जब प्रसाद लेना कम कर दिया तो माधनपुरी अपने अंतिम दिनों में ये क्यों कह रहे थे हे भगवान अब शरीर में त्यागने वाला हूं मैंने आपका भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया मथुरा का भाव अनुकूल नहीं किया मेरा जीवन असफल माना जाता है मॉर्निंग बैठे हुए थे कौन रामचंद्रपुरी ने सुना गुरु क्या कह रहा है गुरु के भाव को नहीं समझा उनकी विनम्रता को नहीं समझा क्योंकि तो रामचंद्रपुरी में भक्तों की निंदा की आदत थी दिन पे दिन उनका अपराध बढ़ते गया जब अपराध बढ़ जाए हमारी श्रद्धा भक्ति महिमा हो जाती है, वही महिमा में रुचि महिमा हो जाती है। तो पूरी गुरु के भाव को समझे नहीं, गुरु को उपदेश देने लगे। अच्छा मास्टर का प्रेम नहीं है तो ब्रह्मांड का चिंतन क्यों नहीं करते? जब गुरु ने वो सुना तो उन्होंने कहा तुम्हें देखते हुए अगर मैं जिंदगी श्री क्या होगा जीवन असफल माना जाएगा, तो उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया। इसकी तुलना में उनके एक और शिष्य थे ईश्वरपुरी, जो बड़ी विनम्रता के साथ गुरु की सेवा करते थे, उनको अपने कंधे में उठाते थे पूरी आयु में, उनके मल मूत्र को साफ करते थे। तो रामचंद्र मन मानन पूरी इतने प्रसन्न थे उनकी सेवा में कि उन्होंने कहा मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम भागवत प्रेम प्राप्त करोगे और सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार करोगे। जो कि उन्होंने किया किसके माध्यम से? चेतन महाप्रभु प्रभुपाद के माध्यम से। तो यह अंतर जब शिष्य सेवा करता है शिष्य दुख से ना हो। तुम्हारी बहुत मुझे बड़ी भक्त है, जब ये मन में सदा एक ही भाव रहता था कृष्ण का नाम, दिन रात वो कृष्ण का नाम लेते रहते थे, बहुत कम खाते थे, कभी किसी से मान भी नहीं थे। जब सन्यासी परमहंस स्टेज में होता है तो कुछ ना होता है, शिव भक्ति का उपदेश दिया और आज यही गोपाल मिल रहा, आज भी आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते। कहा द्वारा में जहां के वल्लभाचार्य के शिष्य उस मंदिर के देखभाल कर रहे हैं। तो आज मानंदपुरी का तिरुवाप्ति भी है, तो हम सबको मानंदपुरी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें भी हमारा आकर्षण बढ़े इसके प्रति, किसके प्रति? हरि नाम के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति। हम सर्वे भी विनम्रता का भाव हो या भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और आज के श्लोक में क्या कहा गया था? जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ध्यान से महानंद पुरी की कथा सुनेगा उसे क्या भगवत प्रेम प्राप्त। अभी महानंद पुरी कथा में आपने ये देखा कि महानंद पुरी को भगवान ने सपने में तीन बार आदेश दिया। पहले आदेश दिया गोपाल गुरिया की स्थापना करो, फिर आदेश दिया चंदन लेकर आओ। जब चंदन ले आए भगवान प्रसन्न होकर की सेवा से फिर आदेश दिया चंदन वही लगा दो यहां तक लगा। क्या कहोगे हमें भी भगवान सपने में पहुंचे आदेश देते हैं, हमें भी उनका पालन करना चाहिए। क्या है उधर प्रभु जी कहते थे कि सपने की कदर जब है जब तुम शुद्ध भक्त बन जाओगे। जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनते जब तक तुम्हारे गुरु के आदेश का पालन करो। ये नहीं कि हम अगर भगवान ने सपने में कहा था सोलह माला करने की जरूरत नहीं है, हमें सपने में कहा था भक्ति की इतनी जरूरत नहीं है, आराम से करो भक्ति। तो आपको सपने में अगर आदेश मिले भी तो गुरु साधु से पूछ लो पालन करे या नहीं करे। और अगर आपको भी कठिन परीक्षा दी जाए तो सब लोग शिष्य के विषय में प्रभुपाद जी भगवत में कहते हैं तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक जो गुरु के आदेश भाव को समझता है वो भाव का पालन करने का प्रयास करता है बोले बिना। दूसरी श्रेणी में शिष्य वो है जिसे कहा जाए ये करो, वो कहते हाँ गुरु जी ये तो करूंगा। तीसरे श्रेणी में शिष्य है चाहे कुछ ही बोलो कहेगा वही जिसका मन कहता है। तो रामचंद्रपुरी आनंदपुरी के शिष्य थे, उनका भाव क्या था गुरु को भी शिक्षा देना क्या परिणाम है भक्ति सुना। तो सबसे ऊंची श्रेणी का शिष्य है तो गुरु के भाव को समझता है, मेरा भाव माना करनी है कभी बोले बिना करता है बोलो रहता श्रेणी का कह रहा कुछ ही बोलो करेगा वही करना। तो हमारा भाग्य यह है कि ग्रंथ में हमें पूरी शिक्षा प्राप्त होती है महाप्रभु जी की शिक्षा में रुचि बढ़े, हम भी शुद्ध भक्त बने, हमारे में भी इच्छा हो जिस भाव से उन्होंने गोपाल विग्रह की सेवा की उसी भाव से आप अपनी इष्ट देव चाहे राधा कुंजारी हो या नामचंद्र की सेवा करो। जब मानव गुरु को कहा गया झाओ जगतपुरी से चंदन लाओ तुरंत वो तैयार हो गए। अगर आपको भी कठिन सेवा दी जाए परीक्षा ली जाए आपकी तो आप भी पालन करना और फिर भक्ति में सफल हो। भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं मानवपुरी की शिक्षा के। तो मानंदपुरी से ही बड़े ऊंचे बड़े संत हैं राजभद्रभाव जी ने अभी राम पूरे भाव महेश्वर संत महेश्वर भक्त महान संत के अभी भाव के भाव दोनों को उत्साह से बनाते हैं। ये दोनों उत्सव के द्वारा हमें संतों का गुणगान सुनने में मिलता है। जितना हम श्रवणम कितना हम करेंगे उतनी देवी के साथ जिंदगी मैं गुरु होगी। तो हाँ प्रयास ही रहना चाहिए कि हम सदा श्रवण कीर्तनम में ही रुचि लें और विकल्प से बचे और कृष्ण कहता हम कोई बढ़े ये भाव रहेगा भक्ति में सब होकर प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। For more information, please visit gkgoswami.com.